Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai O Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radhe Radhe Jai O Radhe Jai O Radhe Jai O Radhe Jai O Shri Radhe Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. जय श्री हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की श्री श्री निताय गौर चंद्र की ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय चौथा श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथं येतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजो विसन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते मां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्ये अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुपण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नृत्यतृप्तो निराशय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्माग्नोऽपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तधा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संचितव्रता अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पानं तथा परे प्राणापान प्राणायामपरायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मष यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनकुटोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजन्विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वान् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियं ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मन योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं ऋतस्थं ज्ञानसिनात्मन चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।
हरे कृष्णा। उपस्थित सारे भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया करके अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए, और जिन भक्तों के साथ छोटे बच्चे हैं कृपया करके वो उन्हें टेंपल हॉल के बाहर लेके जाएं ताकि प्रवचन में बाधा उत्पन्न हो, और जो भक्त गैलरी में बैठे हैं यहाँ आने जाने के रास्ते में उनसे नम्र निवेदन है प्रभु जी और माता जी से कि कृपया करके आप वहाँ से उठ के ऊपर टेरेस पर जाएँ, वहाँ पर इस प्रवचन का सीधा प्रसारण आपको देखने के लिए भी मिलेगा, और जो भक्त बाहर गार्डन में उनके लिए FM 108 इसकी सुविधा भी उपलब्ध है जिसके ऊपर आप प्रवचन सुन सकते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का और मेरे स्वयं का स्वागत है हमारे इस वर्ष के गीतामृत कार्यक्रम में। घर वापसी का अनुभव हो रहा है। जब मैं मेरे आखिरी सेमिनार में था लंदन में, तो 2-3 दिन का वो सेमिनार था, और उसके लास्ट डे सेमिनार के लास्ट डे वहां पर एक डिवोटी ने क्वेश्चन आंसर सेशन में ये क्वेश्चन और उनकी तरफ से एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप क्यों नहीं लंदन सेटल हो जाते हैं? कि यहां पे देखिए इतनी जरूरत है प्रचार के लिए, और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, वहां भारत में कितना प्रदूषण है, कितना शोर शराबा है, और करप्शन कितना है, तो यहां पे देखिए सब कुछ सुख सुविधा है आपके लिए, तो आप क्यों नहीं यहां पर सेटल हो जाते, हम सब देखभाल कर लेंगे, जिससे बात करनी कर लेंगे। तो मैंने उनको एक दृष्टांत रामायण से सुनाया कि मैं आ रहा हूं रामचंद्र जी की भूमि से, परंतु वो दृष्टांत सुनाने से पहले जो उन्होंने ये सारी बातें कही भारत के बारे में कि ये सब कुछ है, तो मैं कहा कि मैं 26 जनवरी को पहुंच रहा हूं भारत फिर से, तो उसके संदर्भ में मैंने उनको एक वीडियो दिखाया पहले सेमिनार के अंत में हो चुका था, उसके बाद में मैंने उनको खोल के प्रोजेक्टर लगवाकर फिर से एक वीडियो दिखाया, तो हम शुरुआत उस वीडियो से करते हैं। थोड़े लाइट्स, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इस वीडियो का,
घबराइए मत,
की
लो जी फिर आ गए ने जनाब।
सोने जी गुलाब ले, गुलाब दा फुल
की गल कनेडिक थले आके मरन दा इरादा है?
तुसी साडा दिल फटकड़ करो, इहदे नालों चंगा अपनी सोहनी जी गड्डी थले देख के मार दे। आ फुल तुहाडे फुल्लां वर्गे हासे ले।
पूरे 2 साल हो गए ड्रामा कर दे नूं।
2 साल मेरे जीन दा सहारा बनन ले। कबूल करो जी ये फुल।
एक कद तक चलेगा अमी? सच्ची मैंने इतना प्यार कर दा है?
कोई शक अपनी जान पे नहीं जा।
दीदी दीदी फ्लैग दीदी।
हम्म,
दीदी
की फ्लैग फ्लैग लाई है?
जेड़ा अपने देश नु प्यार नहीं करता किसे नु की प्यार करूंगा।
रोमांस विद इंडिया। तो रामायण का दृष्टांत कि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और उसके पश्चात अब विभीषण को सत्ता वो दे रहे थे लंका की, तो समय ये प्रस्ताव रामचंद्र जी के सामने सभी ने रखा, विभीषण ने और पूरे लंका निवासियों ने रखा कि रामचंद्र जी क्यों नहीं आप सोने की लंका पर राज्य करते। तब रामचंद्र जी ने विभीषण को और सारे लंका निवासियों को कहा, उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि ये सोने की लंका है और आप आएंगे तो फिर सोने पे सुहागा होगा। तो रामचंद्र जी वो जो प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है वो कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी जन्म भूमि अयोध्या है और वो मेरे लिए स्वर्ग से भी ज्यादा गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा मेरे लिए प्रिय है। तो मैंने कहा कि मैं रामचंद्र जी के भूमि से आया हूं, आप मुझे लंदन में सेटल होने के लिए बोल रहे हैं, जननी जन्म भूमस्य लंडन अपि गरीयसी। तो और एक और था कि भाई जैसे मैंने पिछली बार कहा कि जैसे गाय खूंटे से बंधी होती है, चाहे रस्सी वो लंदन तक जाए या एंटार्क्टिका तक जाए, खूंटा तो यहाँ है। तो इसलिए अभी हमारे कितने पार्ट्स बाकी हैं गीतामृत के, और विशेष रूप से जो हमारा 9वां श्लोक चल रहा है सदियों से, तो और इसलिए कई डिवोटीज ने तो ये भी कहा कि नहीं नहीं आप फिर से जाइए, क्योंकि वो जो गीतामृत का पूरा माहौल है वो यहां पर हम पैदा नहीं कर सकते, और वो पूरा फॉलो कर रहे हैं हमारा एक एक गीतामृत का पार्ट, तो सब जानते हैं कि फोर्थ चैप्टर का नाइन्थ श्लोक का कौन सा पार्ट चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने बैग वैग पैक करके भेजा कि जाओ भाई गीतामृत शुरू करो फिर से। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारे इस वर्ष के हमारे गीतामृत के सेशंस को। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मैं जब फ्लाइट में था तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा बगल में जो पैसेंजर बैठे थे कि ये जो सारे अवतार हैं भगवान विष्णु के, ये सब भारत में क्यों जन्म लेते हैं? तो वो वैसे रहने वाला यूके का, तो हालांकि अलग अलग तरीके हैं इस सवाल के जवाब देने के। तो मैंने उससे कहा कि देखो, भारत के बाहर किसी को खाना पकाने नहीं आता ठीक से। दो महीने हम अनुभव करके आए, वहां पर एक फैमिली के घर 10 दिन के पश्चात उन्होंने कहा, प्रभु जी आज स्पेशल है आपके लिए, स्पेशल बनाया। तो हॉटपॉट वगैरह लेकर आए, खोला, चपाती चपाती था उसके अंदर। प्रभु जी आज चपाती बनाया, तो आप लोगों को अचरज भी नहीं हो रहा है? लेकिन 10 दिन के बाद चपाती खाना मेरे लिए फिस्ट था। मैं जब मॉस्को गया था कुछ साल पहले, तो वहां तो चपाती तो दूर की बात है, सब्जी तक वो जानते नहीं कि सब्जी कैसे पकाई जाती है। तो उनका एक आइटम होता है जैसे दलिया वगैरह हम लोग खाते हैं, पॉरिज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो उनका एक आइटम है जिसका नाम है ग्रेचका। ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम हो। एक थे ना गॉर्बाचोव, तो ऐसे ग्रेचका, तो वो रोज वो ग्रेचका और एक सूप और ब्रेड, बस रोज उनका ये आइटम हुआ। तो बहुत प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता बढ़ रही थी जब ऐसे जगहों पर जाके प्रचार करते हैं। तो फिर उनको समझ में आया कि ज्यादा खा नहीं रहा, वो बस थोड़ा सा बहुत खाकर बोल देते हैं कि हो गया, भर गया, दिल भर गया, पेट तो नहीं भरा, दिल भर गया। लेकिन तो उन्होंने फिर एक एवरेस्ट के जलजीरे का पैकेट लेकर आए, उनको किसी ने डोनेशन दिया था, कोई इंडियन फैमिली ने लाकर जलजीरे के पैकेट्स डोनेशन दिए थे। तो बोले, प्रभु जी ये थोड़ा ट्राई करो आप ऊपर ग्रेचका के ऊपर। तो जलजीरे का पैकेट फिर खोल के वो ग्रेचका के ऊपर थोड़ा छिड़काया, तो थोड़ा लगा जननी जन्म भूमश्चर। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, हालांकि भारत एक पुण्य भूमि है और भगवान विशेष रूप से इस क्षेत्र को चुनते हैं, क्योंकि बहुत से दृष्टिकोण से भारत भूमि जो है हमारी, उसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता, चाहे आप वातावरण को लीजिए, पर्यावरण को लीजिए, हवा पानी इत्यादि, जो सत्वगुण की प्रधानता है यहां पर, और फिर यहां से भगवान जो एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं कि भविष्य पुराण इत्यादि ऐसे पुराणों में ये वर्णित है कि चाहते थे भगवान युग धर्म के रूप में और युग अवतार के रूप में कि पूरे देश विदेश के जितने हैं वो सब भारत आए। जैसे कि प्रभुपाद को जब ये पूछा गया प्रश्न, प्रभुपाद को इनिशियल डेज में ये प्रश्न पूछा गया कि वी वर ऑलवेज लुकिंग अप टू इंडिया, हमको हर समय भारत जाने की इच्छा होती थी, तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि आपकी भारत जाने की इतनी तीव्र इच्छा थी इसलिए भारत आपके पास आया है। सो श्रील प्रभुपाद कैरीड इंडिया एवरीवेयर, ब्रॉट इंडिया एवरीवेयर एंड ब्रॉट एवरीवन टू इंडिया। दिस इज कॉल्ड रियल यूनाइटेड नेशन। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग ये जो भगवान के जन्म और भगवान के कर्म और इन दोनों की दिव्यता की चर्चा कर रहे हैं पिछले कई सत्रों से, तो भगवान के जन्म की दिव्यता के संदर्भ में हमने ये पांच पहलू प्रारंभ किए, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन। तो अब तक हमने जनन और वर्णन काफी विस्तार से वर्णन हुआ है, तो जनन और वर्णन तक पहुंचे हैं, आज हम लेंगे वंदन। और वंदन और सांत्वन ये दोनों संबंधित है कि भगवान के प्रति जब कोई वंदना, प्रेयर्स जिसको बोलते हैं, वंदना अर्पित करता है तो उसके बदले भगवान सांत्वना देते हैं, जैसे कि देवकी और वसुदेव। भगवान प्रकट हुए, भगवान जन्मे कंस के कारागृह में, और जन्मते ही हुआ क्या कि भगवान के प्रति इन्होंने प्रार्थनाएं अर्पित की, और जब भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पित की तो भगवान ने देवकी और वसुदेव जो कि थोड़े घबराए हुए थे कि कंस आ जाएगा और ये हमारा छोटा सा बालक, अब तक जो इतने शिष्यों को कंस ने मार दिया है तो अवश्य ही ये इसे भी मार डालेगा, तब भगवान ने सांत्वना दी। तो ये सीक्वेंस है, जनन वर्णन वंदन और सांत्वन। तो हम जब वंदनम की बात करते हैं, अब देखिए जो भक्ति के विभिन्न अंग हैं, विशेष रूप से नवदा भक्ति, नवदा भक्ति के अंदर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसके अंदर एक मुख्य अंग है भगवान के प्रति। जैसे कि हम रोज जो सोलामाला करते हैं, सोलामाला है क्या, ये एक प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक छोटा सा बालक जब विकट परिस्थिति में पुकारता है अपनी माता को, उस भाव में हमें हरे कृष्ण महामंत्र की इस प्रार्थना के द्वारा हमारे माता पिता राधा और कृष्ण उनको पुकारना है। अब देखिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो कीर्तन करने की या जप करने की जो विधि, जिसको प्रार्थना कहा, अक्सर ये जो प्रार्थना, ये जो विधि है, ये सभी धर्मों में समान रूप से, आप देखिए कि चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो कोई ईसाई हो, कोई भी धर्म का, वहां पर प्रेयर का महत्व कितना बताया गया है। इसलिए एक सेमिनार मैंने पिछले मेरे विजिट में वहां पर लिया था, जिसका ये एंटाइटल मैंने उसको थीम दिया था, from email to email. समझाऊंगा मैं आपको नी मेल का अर्थ क्या होता है. नी अर्थात घुटने. तो जब आपके दोनों पैरों पर खड़े होते हुए आपकी जिंदगी डामाडोल है. होता है ना, लोग बोलते हैं कि अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाओ फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. परंतु दोनों पैरों पर खड़े होने के बावजूद यदि आपकी जिंदगी ठीक से नहीं चल रही तो घुटनों पर टेक कर देखो, जिंदगी समर जाएगी. दिस इज कॉल्ड नी मेल. इफ योर लाइफ इज इन शैम्बल्स डिस्पाइट ऑफ यू स्टैंडिंग ऑन योर टू फीट, ट्राई योर नीज, इट विल डेफिनेटली वर्क. इसे कहते हैं नी मेल. तो फ्लाइट में मैं अपना जप कर रहा था और अपने कुछ वहां के सेमिनार्स प्रिपेयर कर रहा था. तब यहां से वहां की फ्लाइट तकरीबन 8.5-9 घंटे की फ्लाइट होती. तो अब फ्लाइट में जो बाकी पैसेंजर होते हैं बहुत कुछ उनके लिए करने के लिए होता है. वो एक तो खाना पीना चलता रहता है. जैसे ही वो सब कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो गए, चलो भाई अभी शुरू करो, जूस दारू जो भी अनशन खाना पीना है वो सब शुरू होता है. क्योंकि भाई आपने 50,000 रुपए की टिकट खरीदी है तो पूरा वसूली करना है 8.5 घंटे में. तो मेरे बगल में बैठा हुआ ये शख्स, तो इसने देखा कि अब उसने सामने उस स्क्रीन पर अब पिक्चरें देखना शुरू कर दिया. सिनेमा वो भी सब फ्री होता है, सब लेटेस्ट सिनेमा ये वो अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्री सब कुछ. और यहां पर मैंने अपना लैपटॉप खोलकर सेमिनार प्रिपरेशन ये सब कुछ रीडिंग ये सब कुछ चालू किया. वो एयर होस्टेस आई जा रही है, सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, नो मैम. सर व्हाट अबाउट लंच, नो मैम. सर व्हाट अबाउट डिनर, नो मैम. और ये देखता है ये तो नो मैम कर रहा है. उसको डाउट आया टिकट के पैसे भरे कि नहीं. तो फाइनली उससे रहा नहीं गया. उसको मुझ पे तरस आ रहा था कि ये इतनी तपस्या क्यों कर रहा है. तो उसने मुझे पूछा कि एनी प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, आई हैव बीन सीइंग यू फॉर द पास्ट 6.5 आवर्स. तो मैंने कहा कि सी जनरली आई डोंट ईट ऑन फ्लाइट. तो मैं उसको सब वो बताना नहीं चाह रहा था. वो फिर मेरे को अपना टाइम चाहिए था, वही टाइम था मेरे पास वो सारे सेमिनार्स, क्योंकि उधर लैंड करते ही सेमिनार्स शुरू होने वाले थे तो इसलिए मेरे पास उतना ही टाइम था. तो उसे वो हजम नहीं हुई बात, उसको लगा कुछ तो और गहरी बात है. बट यू आर नॉट इवन, ठीक है इफ यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग बट यू आर नॉट वॉचिंग एनी ऑफ द यू नो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स which is also free, what is the problem in that? तो वो कुछ उसने शायद मेरे ख्याल से दो मूवीज देख ली थी. तो फिर मैंने सोचा ठीक है अभी इसे थोड़ी बातें करते हैं, बताते हैं इसको. तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर मैं पूछा, सो व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट. अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंटरटेन. तो मुझे बताने लगा, सी आई वॉज एंजॉइंग दिस वंडरफुल SRK मूवी. तो मैंने कहा हु इज SRK. तो और ज्यादा शॉक पे चला गया. यू डोंट नो SRK, शाहरुख खान. यू डोंट नो शाहरुख खान? ओ अच्छा, नो नो, आई हर्ड अबाउट हिम. यू सिंपली हर्ड अबाउट हिम? You have never watched any of his movies? No. this particular movie, मैंने which movie are you so much, you know, impressed by? कुछ कुछ होता है. मतलब interesting movie का title है, कुछ कुछ होता है. तो फिर मैंने उनको कहा कि देखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हम खुद एक मूवी है और हमारे मूवी के हीरो हैं SSK, श्याम सुंदर कृष्णा. आपके SRK है ना, हमारे मूवी के हैं हीरो SSK, श्याम सुंदर कृष्णा. और हमारे मूवी का टाइटल है बहुत कुछ होता है. आपकी मूवी में तो कुछ कुछ होता है, हमारी जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है. कहां से शुरुआत करें? सो फिर फाइनली क्वेश्चंस इसके ऊपर आए कि ना, ये जो जप है, प्रार्थना है, क्या इसके पीछे, इसका पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है. तो फिर लास्ट के 2 घंटे उसने भी अपना एंटरटेनमेंट बंद किया. उसने सोचा थोड़ा बहुत कुछ होता है, जानते हैं. फिर तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि हालांकि वो अपने धर्म का नहीं था, लेकिन फिर भी उसको समझ में आया, क्योंकि ये सारी बातें जो प्रेयर्स हैं, वो एक जो कनेक्शन है भगवान से, वो हर एक, न केवल चैतन्य महाप्रभु ने तो झारीकरण के पशुओं को हरे कृष्ण महामंत्र या हरिनाम संकीर्तन के अंदर लगा दिया. तो इसलिए यहां जब हम वंदनम, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भाई क्या वंदनम, मुझे तो आता नहीं, वंदनम कैसे करना है. इसके पीछे का जो पूरा हमारे आचार्यों ने, गुरुवर्ग ने जो पूरा साइंस दिया है, वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना ज्यादा वो फुल ऑफ सब्सटेंस है कि उसको जब हम जानेंगे तो अपने यहां भगवान के प्रति कृतज्ञता का जो भाव है वो व्यक्त करते हुए, जो भी हमारे हृदय का भाव हम अर्पित करते हैं, भगवान उसको प्रार्थना के रूप में स्वीकार करते हैं. तो इसलिए ये सेमिनार का टाइटल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम ईमेल टू नीमेल. तो सबसे पहले ईमेल तो हम जानते हैं, सबका हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल हम करते रहते हैं. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ईमेल? फर्स्ट इज अ कंप्यूटर, सेकंड इज ईमेल अकाउंट होना चाहिए. कंप्यूटर भी हुआ लेकिन अगर ईमेल अकाउंट नहीं है तो फिर वो ईमेल जाएगा नहीं. दूसरा है, आपका ईमेल अकाउंट है लेकिन जो बंदा जिसको आप ईमेल करने वाले हैं उसका ईमेल एड्रेस सही, एक डॉट भी यहां वहां गलत हो गया तो ईमेल आपका पहुंचेगा नहीं. और ये सब कुछ ठीक है, परंतु यदि कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो चाहे कितना भी लंबा चौड़ा ईमेल आप टाइप कर लें, कितना भी करेक्टली सारा ईमेल आईडी टाइप कर लें, कितना भी आपका हॉटमेल में ईमेल अकाउंट हो, परंतु अगर कनेक्शन नहीं है तो वो जाएगा नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर नीमेल? वही एग्जांपल्स, वही उसको हम पैरेलली देखने चाहेंगे. सबसे पहले कंप्यूटर, जो कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसी प्रकार से जब हम हमारी प्रार्थनाएं, वंदनम जिसको कहते हैं, भगवान की ओर हम अर्पित करते हैं, तो किसके द्वारा? जो हमें ये इंद्रियां दी गई हैं, इन इंद्रियों के द्वारा. अब देखिए, ये इंद्रियां हमारी जड़ हैं. ये जो जिह्वा है, जिस जिह्वा से हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, इस जिह्वा से पता नहीं हम क्या कुछ और नहीं करते, इस जिह्वा से पता नहीं क्या कुछ और नहीं किया हमने, पता नहीं कैसे अपशब्द इस जिह्वा से हमने उच्चारण किए, क्या अंशंट खाया होगा इस जिह्वा से. परंतु यही जिह्वा, इसी जिह्वा को हमें भगवान के नाम में लगाने के लिए भगवान स्वयं आकर कहते हैं कि शुरुआत भक्ति की है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवो मुखे ही जिह्वा दो जिह मतलब जिह्वा आदि शुरुआत है भक्ति की इस जिह्वा से। तो हाँ ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई कहेगा कि भाई ये तो सबके पास है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर हाँ मैं मेरी प्रार्थना अर्पित कर सकता हूं। नहीं, जैसे कि हमने कहा केवल कंप्यूटर होने से कुछ नहीं होगा। तो हाँ जिह्वा है, ये हमारे कर्ण हैं जो जप करते हैं हम माला पर, तो उंगलियों से सब कुछ, ये सारी इंद्रियों का इस्तेमाल कर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये सब का इस्तेमाल कर हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। ये है बहुत सरल, परंतु ये शुरुआत है। जैसे कि यदि किसी को ईमेल भेजना है तो सबसे पहले कंप्यूटर उसके पास वो मशीनरी होनी चाहिए, फिर जो ईमेल अकाउंट है उसकी तुलना एक प्रॉपर ऑथोराइज्ड जो ईमेल सर्विस है, कितने सारे अलग अलग हैं जैसे कि जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है इत्यादि, तो जो प्रॉपर ऑथोराइज्ड ईमेल अकाउंट आपका जहां पर होना चाहिए प्रोवाइडिंग जो सर्विस देते हैं वो, तो वो है परंपरा, जिस परंपरा में हम जुड़कर अब भगवान की ओर वो हमारी प्रार्थनाएं अर्पित करने वाले हैं। अच्छा, वो जो रिसीवर्स ईमेल आईडी वो है हमारे लिए कलयुग निवासियों के लिए विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है, और इसमें जैसे कि बताया गया है कि हमें श्रील प्रभुपाद ने कहा कि स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है, पूरे हरे कृष्ण महामंत्र का स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। अर्थात ईमेल आईडी वो सब ठीक प्रकार से वो जो पर्टिकुलर कॉलम होता है उसके अंदर लिखना है हमको, और फिर फाइनली जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, लव एंड डिवोशन कि सब कुछ है। होता है ना कई बार हम जब प्रारंभ करते हैं नाम उच्चारण प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना जो भी अपने हिसाब से करते हैं, परंतु यदि उसके अंदर भावना नहीं है, यदि उसके अंदर वो प्रेम नहीं है, तो वो ईमेल या वो जो नी मेल उसको बोलेंगे वो नी मेल वहां तक पहुंचेगा नहीं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे इफ यू आर सिंपली डूइंग सम लिप सर्विस, लिप सर्विस मीन्स सिंपली यूजिंग योर लिप्स बट नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, देन इट विल सिंपली हिट योर ईयर्स, दैट्स इट, इट विल नॉट एंटर इनटू द हार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए ये जो प्रार्थना की विधि है, जैसे यहां पे एक सुंदर कोट से हम शुरुआत करेंगे, लाइफ इज फ्रेजाइल हैंडल विथ प्रेयर, एंड इफ यू हैंडल विथ प्रेयर दैट इज द बेस्ट केयर वी कैन टेक फॉर अवर फ्रेजाइल लाइफ। 7 days माइट मेक अ वीक बट 7 days विदाउट प्रेयर मेक्स वन वीक, कमजोर। और कितने भक्तों का ये अनुभव है कि ये जो साधना है हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो युग धर्म है हमें जो दिया गया है, जब एक दिन तो छोड़ दीजिए, यदि वो सुबह से लेके दोपहर तक एक मंत्र भी नहीं हुआ या एक माला भी यदि नहीं हुई तो बेचैनी सी रहती है, चाहे वो बेचैनी माला पूरी करने की हो। शुरुआत में बेचैनी कौन सी होती है कि 16 माला आधा दिन तो बीत चुका है, ये 16 माला पूरा कब होगा। जैसे मुझे कुछ वर्ष पहले एक बंबई के मेरे जान पहचान के, तो उन्होंने मुझे एक बोला कि एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आपको ऑनेस्टली इसका जवाब देना हो। तो वो चैंटिंग कर रहे थे, उनका पूरा राउंड हुआ, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा, टेल मी ऑनेस्टली, डू यू लाइक चैंटिंग ऑन जपा दिस बीड्स, डू यू लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा, ऑनेस्टली दिल से क्या? तो मैंने कहा, सी आई चैंट हरे कृष्णा एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ. कृष्णा इज बियॉन्ड समवन हुम आई कैन से दैट यू नो आई लव और आई हैव दैट लाइकिंग. बट ऑनेस्टली यू हैव आस्क्ड मी, ऑनेस्टली आई टेल यू, इफ आई डोंट चैंट हरे कृष्णा आई विल बी मिजरेबल. एंड दैट लाइकिंग and loving is the grace of Krishna, and I chant with trust more than liking. I chant with trust in his grace. भगवान की जो कृपा है उससे हमें रुचि, निष्ठा और आसक्ति और प्रेम इत्यादि उनके कृपा से वो प्राप्त हो. हमारी ओर से हमको हमारी प्रार्थना में क्या दर्शाना है कि पूर्ण श्रद्धा, भगवान के उस आश्वासन में पूर्ण श्रद्धा, वो हमें हमारी प्रार्थना के द्वारा भगवान को दर्शाना. इसलिए कि यदि हमारा पूरे दिन भर यदि जप नहीं हुआ है, यदि ठीक से नहीं हुआ, दो स्तर है, एक तो हुआ ही नहीं है और कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब हुआ नहीं अपना, ये प्रार्थना हमने अर्पित नहीं की पूरे दिन भर और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत दूर है दिल्ली. परंतु यदि हमारा जप नहीं हुआ है दोपहर तक या शाम तक और हमें हमारे अंदर एक बेचैनी सी है, तो शुरुआत है हमारी प्रगति, प्रगति शुरू हो चुकी है, समझ लेना चाहिए. इफ वी आर रेस्टलेस अबाउट चैंटिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस. और दूसरा स्तर है कि 16 माला हो गया यार, या जितना भी निर्धारित हम करते हैं वो हमारा हुआ है परंतु ठीक से नहीं हुआ है, और ठीक से नहीं होने की बेचैनी है, ये और ऊंचा लेवल है रेस्टलेसनेस का. दैट आई हैव नॉट चैंटेड अटेंटिवली एंड देयरफॉर आई एम रेस्टलेस. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कोट, इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज प्री रिटर्न बट विथ प्रेयर्स एवरीथिंग विल बी री रिटर्न. लोग बोलते हैं कि आपके जो कपोल पर, ललाट पर जो है वो आपको मिलेगा, आपके नसीब में, आपके भाग्य में, ये सब कुछ जो कहते हैं, हाँ सही बात है, अवर स्क्रिप्ट इज प्री रिटन. परंतु भगवान ने क्या कह दिया भगवद गीता में, कि जो मुझे शरणागत होता है, और प्रार्थना जो है वो शरणागति का एक अंग है. तो जब हम शरणागति में भगवान से प्रार्थना करते हैं होता क्या है, देन ही री राइट्स अवर स्क्रिप्ट. दैट इज द मैथ ऑफ प्रेयर्स. प्रेयर शुड नॉट बी द स्पेयर व्हील ऑफ आवर लाइफ, स्टेपिनी जिसको बोलते ना, कि ये नहीं कि जब हम बीमार हो गए या कोई बीमार हो गया तो चलो अभी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं. नहीं नहीं नहीं, नहीं. यहां पर जो कहा गया है कि इट शुड बिकम द स्टीयरिंग व्हील एवरी डे, जस्ट लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्टीयरिंग व्हील इन अ व्हीकल, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट शुड बी प्रेयर्स एवरी डे. इसलिए जब हम भक्ति योग में लगे हुए हैं तो भक्ति योग की प्रधानता है हमारी भावनाएं. श्रील प्रभुपाद ने ये पूरी संस्था का नाम क्या रखा है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, वो भावना जो कभी कम न हो. अमृत का अर्थ क्या होता है, मृत्यु नहीं है जिसकी. तो वो भावना जो कि भगवान को अमृत के समान लगे, या कृष्ण भावना जो कि अमृत के समान है, ये दोनों अनुवाद है कृष्ण भावना अमृत का। तो उस भावना में हमें प्रगति करनी है हमारी साधना भक्ति में। तो इसलिए जब हम यहां पर इसे हमारा मुख्य अंग बनाए हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन का इसे मुख्य अंग बनाए हैं, तो इसलिए मुख्य अंग अर्थात ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देयरफॉर इट शुड बी द स्टीयरिंग व्हील। तो अब चार स्वरूप हम देखेंगे वंदनम के, और कैसे हमारे आचार्यों ने भगवान के प्रति जो ये विधि है वंदना की विधि, इसका निरूपण कर विश्लेषण कर बताया हुआ है। तो सबसे पहला स्तर है दैन्यता, उसके पश्चात कृतज्ञता, तत्पश्चात तीसरा स्तर है स्तुति, और फिर अंतिम स्तर वंदना का है जब हम भगवान के समक्ष प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो ये चार जो स्वरूप हैं, ये सीक्वेंशियली है कि इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए। और हाँ, अभी तो हम यहां पर स्लाइड में इसका सीक्वेंस देख रहे हैं, परंतु अधिकांश हम जो इस्कॉन में आए हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, तो हम देखेंगे कि हम इसी सीक्वेंस से जुड़े हैं। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस में क्या है, दैन्यता या दैनीयता, एक ही बात है, दैन्यता या दैनीयता। अब इसको हम सब न केवल इस जन्म में बल्कि कितने हमारे पिछले जन्मों में, अंग्रेजी में यदि इसको कहें कि द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लिविंग एंटिटी, दैन्यता, तो दो प्रकार से इसको समझा जा सकता है। एक है हमारी दयनीय स्थिति और एक है दयनीय भाव। तो इन दोनों में अंतर क्या है? दयनीय स्थिति का अर्थ होता है ह्यूमिलिएशन, और दयनीय भाव का अर्थ होता है ह्यूमिलिटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग, कि जब हमारे जीवन में हम दयनीय स्थिति में आते हैं, when we are humiliated by this material body, by this material world, और ये definitely चाहे कोई कितना भी स्वस्थ हो, चाहे कोई कितना भी सक्षम हो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक शरीर, सब कुछ जो कि भौतिक है, वो एक न एक दिन हमें दयनीय स्थिति पर लाएगा या ला चुका होगा। जैसे कि इस ट्रिप में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भगवान जो हैं, ये इस भौतिक संसार को, ये जो टिपिकल क्वेश्चन है कि भौतिक संसार को भगवान ने इतना दुखद क्यों बनाया? यदि ये शरीर है और ये भौतिक संसार, आप जो इतना बोलते हो कि ये हमारे लिए बनाया हुआ है, तो इसके अंदर फिर इतनी पीड़ाएं, इतनी तकलीफें, परेशानी, कठिनाइयां, कितने ये शब्द कहां से उपज इनकी हुई है, ये सब वहां के शब्दकोश में है ही नहीं। ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, विपदाएं, कठिनाइयां, परेशानियां, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब कुछ। तो ये प्रश्न जब हम इनिशियली जुड़ते हैं, और कई बार कई वर्षों बाद भी भक्तों के जहन में ये प्रश्न रहता है कहीं ना कहीं पीछे, कि भगवान ने ये संसार इतना दयनीय स्थिति में क्यों रखा हुआ है, उठा ये प्रश्न कभी? नहीं, मुझमें उठता है खाली। आप लोग बहुत सीरियस हो गए, सीरियस डिवोटीज हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण से समझाया, मैंने कहा कि देखो, यदि आप ये शरीर या ये भौतिक संसार, इसको जैसे कि शरीर की तुलना भगवान एक उपकरण से करते हैं, ये एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ानि माया। तो जो भी कोई यंत्र होता है उसका एक पर्पज होता है, और उस पर्पज के लिए यदि उस यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो दयनीय स्थिति दिखती है। तो मैंने उदाहरण दिया, जैसे कि मर्सिडीज गाड़ी है, एक यंत्र है। अब आप मर्सिडीज गाड़ी को खेत जोतने के लिए इस्तेमाल करो, जैसे किसान जो है खेत जोतने के लिए, आधुनिक किसान जो है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, जो हल है उसको ट्रैक्टर के पीछे, पहले बैलों के पीछे लगाया जाता था, आजकल ट्रैक्टर यूज करता है। तो ट्रैक्टर के बदले मर्सिडीज गाड़ी, उसके पीछे उसने लगा दिया है हल को और खेत जोत रहा है। तो मैंने पूछा, अब देखिए मर्सिडीज गाड़ी से खेत जब कोई जोतता है तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा बताइए। तीन चीजें होंगी। एक तो आपकी मर्सिडीज गाड़ी खराब होगी, क्योंकि उसको उसके लिए नहीं बनाया गया। कहीं पर भी कोई एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताएंगे वो लोग कि मर्सिडीज गाड़ी से खेत जोता जा रहा है तो इसलिए खरीदी है आप, तो आपकी गाड़ी खराब होगी और खेत ठीक से नहीं जोता जाएगा। और तीसरी चीज होगी, आप जो उसको चला रहे हो आप परेशान हो जाओगे। होना क्या चाहिए था, मर्सिडीज गाड़ी चलाने के बाद एक सुखद अनुभव होना चाहिए था ना, परंतु उस मर्सिडीज गाड़ी को जब आप खेत जोतने के लिए चलाओगे, चला रहे हो गाड़ी को लेकिन खेत जोतने के लिए जब चलाओगे तो होगा क्या, योर एक्सपीरियंस विल बी दयनीय, मिजरेबल। अब आप बोलो कि ये मर्सिडीज कंपनी ने क्या गाड़ी बनाई है, मुझे परेशान कर दिया, मैं दयनीय स्थिति में आ गया। तो मर्सिडीज जो गाड़ी का ओनर है या जो कंपनी है, क्या उसकी गलती है? तो भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है इसका एक पर्पज है। जब उस पर्पज में हम इस शरीर को नहीं लगाते, जैसे कि मैं मेरे ख्याल से यहाँ पिछले मेरे यहाँ के सत्र में कह रहा था कि मनुष्यों में और पशुओं में विशेष रूप से यदि हम अंतर देखें, हम मनुष्यों में और पशुओं में, पशुओं का जो स्थूल शरीर है वो बहुत सक्षम होता है, ग्रॉस बॉडी उनका, परंतु सूक्ष्म शरीर उनका बिल्कुल कोई काम का नहीं है, मन बुद्धि इत्यादि। और हम मनुष्यों का जो स्थूल शरीर है, ये ग्रॉस बॉडी, ये बहुत वीक है, कमजोर है। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, हमारी गाय ने जब बछड़ा दिया, एक घंटे में वो बछड़ा दौड़ने लगा, पैदा होने के एक घंटे में दौड़ने लगा, मनुष्य का बछड़ा, मनुष्य का बच्चा। हाँ, अब मनुष्य का बच्चा पैदा होता है उसको फिर कितना संभाल के रखना पड़ता है, कितना नाजुक होता है वो शिशु, उसको कितने संभाल के रखना पड़ता है, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बाद फिर दो कदम लिया, अरे फोटो लो व्हाट्सएप पे करो, चलाइए, दो कदम लिया इसे। हाँ, तो अगर ये जानवर वगैरह देखें मनुष्यों के बच्चों को तो हंसेंगे, एक साल लगता है तुमको चलने में, हम तो एक घंटे में दौड़ना शुरू करते हैं। तो फिजिकली देखो, फिजिकली वी आर सो वीक, हर चीज के लिए हमको सहारा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। अब पशुओं को देखो कि जहां कहीं मिल जाए वो लोग उड़ते फिरते रहते हैं और एकदम वो लोग स्वस्थ रहते हैं। हम लोग सब सहारे लेने के बाद भी ये गोली, ये डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, वही घर खरीद लिया, उसके बाद में फिर एक खुद का प्राइवेट डॉक्टर भी होता है, और डॉक्टर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसकी भी तकलीफ। और जानवरों को देखो, कुत्तों को देखो, मिस कर रहा था उनको मैं, उधर कोई दिखते नहीं ऐसे, उधर बहुत आलीशान कुत्ते होते हैं। कुत्तों को देखो, चाहे कितना भी खाएं कभी तोंद बाहर नहीं आती। हाँ, कभी देखा कुत्तों की तोंद बाहर आई है? कभी नहीं। इधर उधर सब जगह मुंह मारते रहते हैं, लेकिन एकदम फिट रहते हैं। और मनुष्यों का क्या प्रॉब्लम है, ये तोंद बाहर आ गई, अभी वेट लॉस प्रोग्राम, अभी ये डबल चिन, ये लटक रहा है, ये बाहर आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सब कुछ। तो फिजिकली हमको हर समय सहारे की जरूरत है, वी आर वीक फिजिकली, बट अवर सटल बॉडी इज वेरी स्ट्रांग। ये जो हमारा मन है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये सब दैट इज अवर प्रेरोगेटिव, ये हमारी विशेषता है। तो इसलिए हम हमारे सूक्ष्म शरीर के सहारे हम हमारे स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द फंडामेंटल्स ऑफ द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टू यूज द सटल बॉडी टू विन ओवर द ग्रॉस बॉडी। उल्टा हो रहा है यहां पे, लोग अपने सूक्ष्म शरीर को प्रदूषित कर स्थूल शरीर को और दयनीय स्थिति में डाल रहा है। दैट्स कॉल्ड ह्यूमिलिएशन। चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी स्वस्थ हो, यदि वो सही मायने में अपने शरीर को, स्थूल और सूक्ष्म को नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में जाना ही पड़ेगा। अब तो ये शख्स मुझे कुछ हद तक इनको इनके सवाल का जवाब मिला, परंतु फिर भी ये थोड़ा और जानना चाहते थे। तो मैंने एक हॉस्पिटल का उदाहरण दिया। मैंने कहा देखिए, एक हॉस्पिटल में सब सारी जो सुविधाएं हैं वो किसी मरीज को स्वस्थ बनाने के लिए है ना। जितने भी, चाहे वो उनके ऑपरेशन थिएटर हो, उसके अंदर की मशीन, सो आजकल तो हाईटेक कितने सारी मशीनरीज होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, फिर वहां का जो खाना है वो एकदम डाइटिशियन द्वारा निर्धारित मरीजों के लिए, डाइटिशियन आके वो लोग चेक करते रहते हैं। बाहर का कोई खाना अलाउड नहीं होता है मेरे ख्याल से हॉस्पिटल के अंदर। जो वो लोग प्रोवाइड करेंगे वही पूरा हाइजीनिकली बना हुआ और उनके हेल्थ डाइट के अनुसार, तो वो सब कुछ रहता है। मैंने पूछा, इन हॉस्पिटल यू विल फाइंड एवरीथिंग फेवरेबल फॉर गुड हेल्थ, क्लीनलीनेस, फूड, इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, पूरा प्रोफेशन है क्या उनका टू गिव अस गुड हेल्थ? सो यू हैव डॉक्टर्स, यू हैव इक्विपमेंट, यू हैव फूड, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज फॉर योर गुड हेल्थ, स्टिल इन अ हॉस्पिटल यू फाइंड पीपल सफरिंग, इज इट नॉट? हॉस्पिटल के अंदर इन सब के बावजूद आप देखोगे कि मरीज जो हैं वो दर्द में है। तो जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि संसार में इतना दर्द क्यों है, भगवान क्यों ये दर्द दे रहे हैं, तो ये लाइन ध्यान में रखना हॉस्पिटल वाली। इन अ हॉस्पिटल द पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ द डॉक्टर, द पेन इज इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर। हिंदी में मैं इसका अनुवाद करता हूं, एक अस्पताल में दर्द डॉक्टर के वजह से नहीं है, डॉक्टर होने के बावजूद दर्द है। समझ में आया? उसी प्रकार से इस संसार की जो दयनीय स्थिति है ये भगवान के वजह से नहीं है, भगवान होने के बावजूद तो अब कौन है इसका कारण? वो मरीज। तो वो अगर बोले कि ये अस्पताल इसके वजह से मुझे दर्द मिल रहा है, नहीं। तो भगवान ने ये पूरी सृष्टि इस एक अस्पताल की तरह बनाई है, और इस अस्पताल के अंदर भगवान ने ऐसे उपकरण, ऐसे डॉक्टर, ऐसा सब कुछ भेजा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। परंतु इसके बावजूद मैं आपको बताता हूं, ये सच्ची घटना है। जब मैं कुछ वर्ष पहले हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहां एक डिवोटी, वो मेरे लिए नारियल पानी लाते थे। तो रोज वही पूरे दिन मेरा डाइट था, नारियल पानी। तो वो रोज दिन में 3-4 बार मेरे लिए नारियल पानी लाते थे। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी, ये थोड़ा मना कर रहे हैं ये लोग कि मैं नहीं ला सकता, ये बोले कि ये लोग ही प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा ठीक, नारियल पानी में क्या प्रॉब्लम, मतलब ठीक है आप घर से कुछ पका के नहीं ला सकते, लेकिन नारियल पानी। तो मैं शॉक हो गया कि एक उसी हफ्ते जब मैं एडमिट था, तो उसी हफ्ते वहां पर एक किस्सा हुआ कि एक मरीज वहां पर वार्ड में एडमिट, तो वो क्या कर रहा था, उसके उसका रिश्तेदार नारियल पानी लाता था और इसके बीमारी के सिम्टम्स बढ़ने लगे। तो डॉक्टर शॉक हो गई कि ये सब तो हम लोग इसको मेडिसिन दे रहे हैं, एडमिट है तो हम लोग दे रहे हैं इसको मेडिसिन, डाइट भी हमारे यहां, तो ये इसके बीमारी के सिम्टम्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि ये जो नारियल पानी मंगाता था, तो ये क्या कहता था अपने वो जो भी बंदे को जो लाता था नारियल पानी, तो पानी फेंक दे उसमें दारू भर के ला। तो वो नारियल होता था केवल, और उसके अंदर दारू भर के स्ट्रॉ डाल के ये हॉस्पिटल के अंदर बैठा दारू पी रहा है। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं कोई अपने भक्तिविधान हॉस्पिटल में। तो इसलिए उन्होंने वो भी बंद कर दिया कि कोई लाएगा। अब देखिए, ये टिपिकल एग्जाम्पल है हम सब बद्ध जीवों का इस अस्पताल के अंदर, कि अस्पताल में सब कुछ सुविधाएं हैं आपको ठीक करने की, लेकिन उसके बावजूद नारियल पानी के अंदर दारू डाल के अगर कोई पिएगा और बोलेगा कि भगवान मेरे को क्यों दर्द दे रहे हैं, तो कौन दोषी है इसमें? दिस इज कॉल्ड दी condition of the living entity within this material, therefore is called conditioned living entity. तो हां, हम लोग ये जो पहला स्तर है वंदनम का, हम लोग इस संसार में ठोकर खा खा के जब फाइनली श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें या फिर कोई डिवोटी या फिर यहां पर आके, जैसे मुझे याद है जब मैं पहली दफा मैंने डिवोटीज को देखा, तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग प्रकार की खुशी इनके अंदर दिखती है। तो ये एक चीज कि हाँ, मैं भी प्रयास करता हूं खुश होने का अलग अलग तरीके से, लेकिन यहां पर इनके अंदर जो एक अलग प्रकार की खुशी दिखती है। तो हाल ही में मैंने हमारे जो इस्कॉन के इंद्रदुम्न महाराज है, तो वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट लिखा था कि वो एक ऐसे देश में, वो अलग अलग ऐसे ऐसे देशों में, दूर दराज के देशों में प्रचार करते हैं, हम लोग कभी सुने भी नहीं होंगे ऐसे देशों के बारे में, वहां जाके वो प्रचार करते हैं। इंद्रदुम्न महाराज यहाँ पर भी आए थे, तो वो एक ऐसे मिडल ईस्ट कंट्री में जा रहे थे जहां पर वो उनके सन्यासी वेश में नहीं जा सकते थे, तो वहां पर उनको ऐसे रेगुलर पैंट शर्ट में और टोपी पहनकर, कंठी माला छिपाकर या निकालकर, बिना तिलक, जैसे कि कोई रेगुलर पैसेंजर है, वैसे उनको वहां पे जाना था। तो उन्होंने सब देखभाल कर लिया था कि कोई भी डिवोटी का चिन्ह कहीं पे दिखे नहीं, सब छिपा दिया उन्होंने। इमिग्रेशन सिक्योरिटी पे उनको पकड़ लिया और उसने कहा, आई नो यू आर हरे कृष्णा। ये शॉक हो गया, तो कैसे पता चला? तो ये अभी थोड़ा सा ऐसे सकपका है, तो उसने कहा I know you are Hare Krishna because you look so happy. Look at the faces of everyone. So how miserable they look. You look happy. You must be Hare Krishna. Pakde gaye tum. It was a compliment. So, well, I know you are Hare Krishna. Go. Be happy. More happy. जैसे मैं जब पहली दफा अमेरिका गया था तो वहां पर एक बहुत ही अच्छे हमारे इस्कॉन के डिवोटी हैं, उनसे मैं मिला तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि इस्कॉन में आने से पहले वो माफिया गैंग के मेंबर थे और मतलब बहुत एक्टिव मेंबर थे, ऐसे पैसिव मेंबर नहीं थे वो। और जो हम लोग कहते हैं ना सुपारी लेकर, पान नहीं बनाना, सुपारी लेकर जो काम करते हैं वो काम करते थे वो। कॉन्ट्रैक्ट किलर इंग्लिश में जिसको, ही वाज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर इन दैट माफिया गैंग। तो वो ऐसे ही उनके एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकले थे, कार के अंदर उन्होंने सब मारने के लिए जो बंदूक वगैरह वो सब रख रखा था, उनको वो फोटो और नाम और एड्रेस वगैरह सब दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, खत्म करना है बस उनका वो काम था। ये नहीं जानना कि क्यों, कौन है वो, उसका कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं, बस उसको बताया गया है कि इतने पैसे तुमको मिलेंगे, उसको खत्म करना है, वो करते। तो कार के अंदर ये सब अपना सामान वगैरह लेके मारने का उस आदमी को निकले हुए थे। तो उनकी कार रुकी सिग्नल पर, तो उन्होंने हमारे हरे कृष्णा के एक ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूटर को देखा। तो वो देख रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूटर को, एकदम एफलजेंट अमेरिकन, गोरा चिट्टा, तिलक लगाए हुए, सर मुंडवाए हुए और एकदम मुस्कुराते हुए सबको प्रभुपाद की पुस्तकें वो दिखा रहे हैं। तो इन्होंने ना ये ब्रह्मचारी को बुलाया और इनको पूछा, टेल मी वन थिंग, आई डोंट नो हु यू आर, I don't want to know who you are, but tell me one thing, why are you so happy? क्योंकि इतना सब कुछ उनके पास, इतना पैसा और जो भी उनके गैंग के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, तो वहां पे उनका रुबाब था वो गैंग में, ये सब होने के बावजूद ही वॉज मिजरेबल। तो उन्होंने देखा कि पूछा, why are you so happy? तब देखिए इसके बहुत से उत्तर दे सकता है कोई प्रचारक, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। इन्होंने कहा, आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव ओनली टू सेट्स ऑफ क्लोथ्स। तो ये और शौक हो गए, क्योंकि इनको बहुत शौक था एकदम टिप टॉप रहने का, तो इनका अलमारी भरी हुई थी इतने सारे। तो देखो कैसे परमात्मा इंस्पायर करते हैं, इनको लगा कि ये व्यक्ति दो जोड़ी कपड़े और ये इतना खुश है, और मेरी अलमारी पे अलमारी भरी पड़ी और मैं फिर भी इतना दुखी हूं। पता लगाना पड़ेगा मुझे कि क्या ये पूरा ये माजरा क्या है। तो फिर वो जुड़े, इस्कॉन से जुड़े, और फिर इतना जुड़े कि फाइनली उन्होंने वो सब माफिया गैंग वगैरह छोड़ा और न्यू वृंदावन का जो टेम्पल है अमेरिका में वो ज्वाइन करने के लिए, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए वो पहुंच गए। तो उन्होंने सोचा, लेकिन मुझे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पहले बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, टेंपल प्रेसिडेंट को। तो पहले तो कोई जानता नहीं था, तो सब लोग इनका स्वागत किए कि अरे सीरियस हो रहे हैं, इतने अच्छी से कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर फाइनली जब वो ज्वाइन करने का समय आया तो उन्होंने फिर ऑनेस्टली उनको कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं पहले ये वाला गैंग, वो गैंग इतना इनफेमस था। अच्छा, वो गैंग के मेंबर। तो मतलब फिर आपने, हाँ मैंने बहुत लोगों को दूसरे लोकों में पहुंचाया है। तो इन्होंने कहा, टेंपल प्रेसिडेंट ने कहा, इफ यू हैव फेथ इन कृष्णा देन गो एंड सरेंडर टू द पुलिस। अब देखिए ये निर्णय लेना कि पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण करना, तो वो गए, पुलिस के पास गए, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हुए पुलिस के पास गए, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और पुलिस वो लोग हक्का बक्का रह गए कि वो जो इसके पीछे पड़े हुए थे इतने सालों से, ये खुद क्यों आत्मसमर्पण कर रहा। सबसे पहले ये जानना कि क्या वो रीजन है। तो जब रीजन बताया कि ऐसे ऐसे स्पिरिचुअलिटी, हरे कृष्णा और ये सब के वजह से, तो वो लोग, उन्होंने फिर वो जज के पास पूरा इनका केस लेकर गए। जज ने देखा कि जो जिन जिन को इन्होंने खत्म किया था वो एनीवेज वो दूसरे गैंग के मेंबर्स थे और उनको, उनके पीछे भी ये पुलिस लगी हुई थी, तो इसलिए पुलिस का कुछ काम अलग तरीके से इन्होंने कानून को हाथ में लेके किया, लेकिन पुलिस का ही काम किया उनको खत्म करने का। तो इस जज ने एक तरीके से रिस्क लिया और सबसे मिनिमम पनिशमेंट इनको देकर कहा, आई गिव माई वेल विशेस फॉर यू टू कंटिन्यू योर लाइफ विद द हरे कृष्णा। तो ये फिर बरसाना महाराज वहां पर है, उनके डिसाइपल बने ये, और फिर पूरा प्रचार कार्य में लगे, साधना भक्ति अपनी कर रहे हैं। और फिर वो न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में गए कुछ एक वर्ष पश्चात। तो न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में अब वो भी दो जोड़ी कपड़े लिए, है ना, एकदम खुश लग रहे थे, नाच रहे थे रथ यात्रा के अंदर। दूर उन्होंने देखा कि एक माताजी, और वो माताजी भी इनको देख रही है, ये भी उनको देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों आमने सामने आए, पास में आए, यू 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 ऐसे ऐसे एक दूसरे को कर रहे हैं। वो माताजी भी इसी गैंग की मेंबर थी। वो न्यूयॉर्क में डिवोटी बनी, वो साड़ी पहनी हुई और ये धोती कुर्ता, तो ये दोनों एक ही गैंग के मेंबर थे। तो उनका आमना सामना हुआ और फिर वो लोग धीरे धीरे वो लोग ये सोचने लगे कि ये हरे कृष्णा तो ये गैंग से भी ज्यादा पावरफुल है, पूरे गैंग को ये लोग हरे कृष्णा बना रहे हैं। जो प्रभुपाद कहा करते थे उस समय भी, उन्होंने शिकागो के पुलिस कमिश्नर को कहा था, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, बिकॉज क्योंकि शिकागो में बहुत क्राइम रेट इतना बढ़ गया था, अभी भी बहुत ज्यादा है अमेरिका में, शिकागो में क्राइम रेट। तो उस समय वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट, चीफ ऑफ पुलिस, वो आया श्रील प्रभुपाद के पास कि ये आपके पास क्या नुस्खा है कि ये आपके जो हैं ये सब एकदम गाय की तरह जीवन जी रहे हैं। हाँ, बोलते ना गाय बन गए हैं लोग, पहले लोग खूंखार जानवर की तरह, भेड़िए की तरह यहां वहां भटकते थे, वॉट इज दैट फॉर्मूला यू है। तो प्रभुपाद ने उस समय कहा था, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज द पेनेशिया, यही इलाज है सारी बीमारियों का। तो ये जो दयनीय स्थिति हम जिसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं, तो दयनीय स्थिति हमारे कर्मों की वजह से हम जिस दयनीय स्थिति में आते हैं, तो ये स्थिति हमें कहां लानी चाहिए, दयनीय भाव। यदि दयनीय स्थिति से दयनीय भाव नहीं आ रहा तो व्यक्ति वो नास्तिक बनता है या फिर डिप्रेशन में जाता है, खुदकुशी करते हैं जो भी कुछ, या हर समय परेशान रहते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू ह्यूमिलिटी, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑन वंदनम प्रेयर्स। अब जब ये अवस्था से हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है कृतज्ञता, कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड, ये जागृत होना चाहिए हमारी प्रार्थनाओं में। तो अब देखिए कृतज्ञता का भाव दो पहलुओं से समझा जा सकता है। एक है हमारी अयोग्यता, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हाट वाज अवर क्वालिफिकेशन दैट यू गेव अस द हाईएस्ट इवन इन स्पिरिचुअलिटी यू गेव अस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी. क्या योग्यता थी हमारी? प्रभुपाद ने कहा यू डिडंट हैव एनी क्वालिफिकेशंस, आई क्रिएटेड योर क्वालिफिकेशन. तो कृतज्ञता का भाव कब आता है? जब सबसे पहले हम हमारे गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि मेरे अंदर क्या योग्यता थी. राधा कृष्ण का ये जो हरिनाम है, ये जो प्रार्थना है, जो कि डायरेक्टली राधा कृष्ण एक साथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर राधा भाव दिए हैं इस महामंत्र के द्वारा, और हम लोग यहां पर इसका जप कर रहे हैं, इसका कीर्तन कर रहे हैं, और हमें कोई अंदाजा नहीं है हमारे सौभाग्य का, कोई अंदाजा नहीं हमारे सौभाग्य का. तो ये बात समझना, हमारी अयोग्यता और उसके साथ साथ भगवान की उदारता, जब ये समझ में आ जाएगी कि हमारी अयोग्यता क्या है, तो भगवान की उदारता, जैसे वो मराठी में कहते हैं ना, मी लहान आणि भगवंत महान. अभी तक उल्टा होता है, भक्ति में आने से पहले सब अपने आप को महान मानते हैं. इसलिए एक बार ये प्रश्न मेरे ख्याल से श्रील प्रभुपाद को पूछा गया था कि ऐसा कैसे है कि जब जीव इस संसार में आता है तो जीव जो है वो स्वामी बनना चाहता है, वो खुद भगवान कृष्ण बनना चाहता है पूरे ब्रह्मांड का, तो कैसे भगवान मैनेज करते हैं इतने सारे जीव आए, तो सबको खुद का प्राइवेट ब्रह्मांड चाहिए उसका स्वामी बनने का. तो बहुत सुंदर जवाब दिया गया कि भगवान, अब देखो कैसे एक्सपर्ट मैनेजमेंट भगवान का, कि सबको इंडिविजुअल ब्रह्मांड देंगे तो कितने ब्रह्मांड बनाने पड़ेंगे. तो भगवान ने क्या किया, फॉल्स ईगो दे दिया, एक ब्रह्मांड के अंदर सबको फॉल्स ईगो के साथ भेज दिया, अहंकार. तो फॉल्स ईगो के साथ सबको लगता है ये मेरा है, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, हम सब घूम रहे हैं, सब अपना अपना फॉल्स ईगो लेके, ये पूरा मेरा है, पूरा मेरा है. कुछ कुछ होता है मेरे वजह से, कुछ कुछ होता है, तो सबको यही लग रहा है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल, आई सर्वे. दिस इज द एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ कृष्णा. Instead of creating separate brahmand for each fallen living entity, what he did, he just sent them with false egos. So everyone is thinking, this is mine, this is mine, this is mine. God is having a big laugh over that. To kritagyata ka bhav. Ab dekhiye, ye jo ek sundar quote hai, man gets and forgets, whereas God gives and still forgives. हाल ही में इसी मेरी ट्रिप में मैंने बच्चों के साथ एक सेशन लिया, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन था, क्योंकि आजकल यहां पर भी खैर ये एक प्रॉब्लम जो मॉडर्न डे जो मॉडर्न किड्स बोलेंगे उनको, कि ये जो इनग्रैटिट्यूड जिसको बोलते हैं कृतज्ञता, ये जो इतनी ज्यादा फैल रही है. तो एक सेशन मैंने उन बच्चों का लिया, तो क्या वो सेशन था, बहुत सिंपल एक सेशन था जिनके अंदर, क्योंकि सारे पेरेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि ये जो बच्चे हैं ये इतने ज्यादा जो उद्दंड हो रहे हैं, इतने ज्यादा डिसोबीडियंट हो रहे हैं, तो प्लीज अगर आपके पास कोई नुस्खा है. तो सबसे पहले तो वो जो छोटा सा सेशन मैंने उन बच्चों के साथ लिया, उस वो दिखाने से पहले आपको एक ये वीडियो दिखाएं, फ्रॉम सेल्फलेसनेस टू बीइंग, और फ्रॉम सेल्फिश टू बीइंग सेल्फलेस.
not my birthday today. Yeah, it's tomorrow. Bye.
Hello, beta.
Hi, Baba.
So, tomorrow is your birthday.
So, beta, birthday ka tujhe kya gift hai?
First of all, I want to get rid of this phone, ma.
Okay, beta, which phone do you want?
iPhone?
Beta, but you are too young to have an iPhone.
But, Papa, all my friends have an iPhone.
Hey, but, beta, iPhone sata rahu de. Tujhya sathi vegane apan kaitari chhan gheuya na.
Dad, but I want an iPhone only.
iPhone? बेटा त्यापेक्षा दुसरं काही चांगलं मान ना.
डॅड, आयफोन.
सॉरी
हे बघ बेटा, हट्ट नको ना करू.
पण मम्मा. ओके, मला काहीच नको, मी चालले.
अरे पण कुठे चालली?
फ्रेंडकडे. इलिशा, एक पार्सल देऊन यायचंय, मी आले लगेच. हा
अच्छा ठीक आहे, लवकर ये.
हा 5 मिनिटात आले. मावशी जरा पाणी मिळेल का?
पाणी पाहिजे वे. चहा घेणार?
चहा नको नको, पाणी द्या नुसतं.
नको का म्हणतीस बर, तो अडगूत सोकले. बाकी काय बोलू ग, गपात चल.
अहो मावशी नको नको, खरंच नको. अहो मावशी
ये बाय, ये
नको मावशी.
असं नाही बाय, चाकरी किती सोकले बघ. बर
मावशी, माझी मैत्रीण
आहे. बस इथे.
खरंच नको मावशी.
असू दे, बस चा करते. बस इथे.
मावशी, मशीन कोणाचं?
आमचं आहे ग, कारण मोडलं यार.
हा आवाज कसला मावशी?
तू जाऊन बघ की बार.
या की एवढी सगळी मुलं तुमची?
नाही नाही, हा फक्त एक माझा आहे, बाकी सगळी गल्लीत.
म्हणजे तुम्ही ट्युशन घेता का?
हो.
आणि फीस किती?
नाही नाही, एवढ्यासाठी कोण फी घेते का? मला येत शिकवा म्हणून मी शिकवते.
गुड मॉर्निंग
बेटा. सत्ता
आहे. कसला?
आज तुझा बर्थडे आहे ना बेटा. मग चल आवा लवकर, आपल्याला आयफोन जायचं आहे.
आयफोन? पप्पा पण त्याच्या आधी अनेक काम करूया. मी 10 मिनिटात आऊट येते, मग मी तुम्हाला सांगते. चला.
हॅलो. हाय निशा, हॅपी बर्थडे.
हाय, थँक यू.
So, where's the party tonight?
Actually, can you do me a favor, please?
Yeah, tell me.
आज माझा वाढदिवस आहे.
आशीर्वाद असो.
मावशी, हे माझ्याकडनं तुम्हाला.
अगं बाई, मॅम कशाला बघा एवढी मोठी.
ताई, माझ्याकडनं तुम्हाला. अगं हे कशाला?
शिकवायला. Public social responsibility attempts to create the awareness that every individual is indebted towards the society. The ultimate sense of happiness comes when you realize that you have been of help to someone in need. So let's do our bit to make this world a happier place to live, as serving humanity is the essence of life.
हुआ क्या कि सिमिलर सिचुएशन वहाँ पर कि एक फैमिली और वो अपने बच्चे का बर्थडे बहुत ही आलीशान तरीके से किसी फाइव स्टार होटल में मनाने जाने वाले थे. तो मैंने उनको कहा कि देखिए वो फाइव स्टार होटल में जब आप आपके बेटे का बर्थडे मनाने जाओगे तो वहाँ पर लंबा चौड़ा स्प्रेड होगा, हो सकता है कि कुछ 20-25 कोर्स का फीस्ट होगा, और जो वहाँ पर आएंगे मोस्टली होता क्या है कि वो लोग इतना उतना खाते हैं और बाकी फिर पूरा वेस्ट होता है. जैसे कि एक सर्वे में बताया गया कि केवल बैंगलोर सिटी में पूरे एक साल की शादियों का जो बचा हुआ शादियों का उसका कॉस्ट निकाला गया तो वो करीब 30 करोड़ आया. वेस्टेड फूड इन द मैरिजेस. तो फिर मैंने उनको ये सलाह दी, क्यों नहीं आप जो उतना खर्चा करने वाले हो क्यों नहीं आप किसी जरूरतमंद की जाके कुछ सेवा करो, ताकि जो सुख सुविधाएं, जो आलिशान सुख सुविधाएं आपके बच्चे को मिली हुई हैं उसके अंदर एक कृतज्ञता का भाव जागृत हो. That I have got this, I may not be deserving this. मैं हो सकता हूं कि इसके लायक ना हूं, परंतु फिर भी एक ऐसे परिवार में, एक समृद्ध परिवार में मैं पैदा हुआ. परंतु ऐसे कितने हैं जो जरूरतमंद हैं, जो कि ऐसे परिवार में नहीं पैदा हुए हैं. तो ठीक है, हम सब तक नहीं पहुंच सकते, परंतु शुरुआत तो अपने स्वयं के इस भाव से कर सकते हैं, कृतज्ञता का भाव. तो ये जो सेशन एक मैंने बच्चों के लिए लिया, वहां पर ऐसे ऐसे आलिशान घर, और उनके केवल आप किचन को देखोगे तो ये अपना जो टेम्पल हॉल है इसका यू नो 1/4 साइज का तो किचन होता है उनका. इतने बड़े बड़े तो उनके किचन है, और किचन में सब कुछ उनके लिए उपलब्ध किया जा देकर रखते हैं वो लोग. तो ये बच्चे जो कि उनको यदि नल से पानी एक मिनट लेट आ रहा है तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वहां पे सब कुछ इंस्टेंट है. कोई भी चीज अगर इंस्टेंटली उनको नहीं मिली, उनको खाने के लिए अगर चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, अगर उनको तुरंत उनके रेफ्रिजरेटर में, उनके कैबिनेट्स में ये सब कुछ उपलब्ध नहीं है तो दे थ्रो टैंट्रम्स, चिल्लाने लगते हैं. और यहां तक कि मैंने बच्चों को देखा, वो लोग उनको चॉकलेट नहीं मिली या उनके उनकी मदर उनको कह रही कि तू कुछ पौष्टिक खा, तो माँ को चिल्ला रहे हैं आई हेट यू, यू आर माई एनिमी, यू आर नॉट गिविंग मी वॉट आई लाइक, इस प्रकार की भाषा. तो वे लोग सब परेशान मेरे पास आए कि कुछ कीजिए. तो हुआ क्या कि उस समय ये जो पठानकोट का किस्सा हुआ था तो मैं वो न्यूज चैनल देख रहा था, तो उस न्यूज के बीच में एक एडवर्टीजमेंट आया न्यूज के दौरान. वो एक माउथ वॉश का एडवर्टाइजमेंट था. तो उस माउथ वॉश के एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया था कि जैसे ही वो माउथ वॉश वो ले रहा है कोई बंदा, तो वो दिखाते ना आजकल कि वो माउथ वॉश आपके मुंह के अंदर कैसे व्यक्ति बन गया है, और वो आपके दांत को घिस रहा है और कीटाणु निकाल रहा है. हा? जैसे टूथब्रश व्यक्ति बन जाता है और अंदर जा जाके घिस रहा है, ऐसे दिखाते हैं आजकल एडवर्टाइजमेंट वो लोग बहुत एडवांस तरीके से कि उसको व्यक्ति बना रहे हैं, हर चीज को व्यक्ति बना रहे हैं. योर कार स्पीक्स टू यू, योर फोन स्पीक्स टू यू, योर माउथ वॉश डज थिंग्स फॉर यू, पर्सन. तो मैंने कहा दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट. मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा, बोले स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरी वन इज अ पर्सन, माउथ वॉश इज अ पर्सन. तो फिर ये मैंने थीम लिया वो बच्चों को सिखाने के लिए, और मैं उनको किचन में ले गया और मैंने किचन में उनको सब दिखाया. देखो ये रेफ्रिजरेटर है, ये माइक्रोवेव ओवन है, ये तुम्हारे जहां पर तुम्हारे लिए पास्ता हो. तो उनके लिए पास्ता बनाया मैंने, उनको पास्ता सबको बहुत पसंद था, तो सबको साथ में लेकर पास्ता बनाया और सब इतना खुश हो रहे थे, वो सब चीज वगैरह सब डाला हुआ पास्ता. तो फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने उनको एक बहुत प्रैक्टिकल, आप कहोगे संडे स्कूल टाइप लिया वो बच्चों के लिए. तो मैंने उनको सबसे पहले उस किचन के दीवार में टंगी हुई घड़ी दिखाई. मैंने कहा लुक एट दिस वॉल क्लॉक, डू यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वॉल क्लॉक. तो वो कुछ समझे नहीं. तो मैंने कहा when you are late for your school, you keep looking at the wall clock. जब भी हम लेट होते हैं, हमको समय पे पहुंचना है, तब हम टंगी हुई जो घड़ी है दीवार पर, टंगी हुई जो घड़ी है घर की, हम कितना उसको महत्व देते हैं उस समय. जैसे इस समय बहुत महत्व है अभी उस घड़ी का, है ना. जब प्रवचन शुरू होता है तब इतना नहीं, लेकिन जैसे ही फिर थोड़ा लेट हो जाता है, 9:15 हो गए अभी, हाँ 20 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंस आता है फिर वो वॉल क्लॉक. हम लोग तो देख नहीं पा रहे, ये तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इनको तो देखना चाहिए कम से कम. तो मैंने उनको कहा जस्ट लाइक दिस वॉल क्लॉक, वेदर यू लुक एट द वॉल क्लॉक, वेदर यू डोंट लुक एट द वॉल क्लॉक कीप सर्विंग यू सेल्फलेसली. घर के सारे सदस्य काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, बाकी काम पे चले गए, घर पे कोई नहीं है, फिर भी वो जो घड़ी है दीवार पर टंगी हुई, ये नहीं कि अभी घर पे कोई नहीं चलो मैं बंद पड़ती हूं. द वॉल क्लॉक कीप्स डूइंग इट्स सर्विस, वेदर somebody इज वॉचिंग, वेदर somebody इज recognizing, वेदर somebody इज देयर एट होम और नॉट. तो उन्होंने कभी दीवार पर टंगी घड़ी को इस नजरिए से नहीं देखा. हाउ मच ग्रेटफुल यू शुड बी जस्ट फॉर अ वॉल क्लॉक हु इज रेंडरिंग सम सर्विस टू यू, फॉरगेट अबाउट गॉड. फिर दूसरा उदाहरण मैंने उनको रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये लोग सब इससे रिलेट कर रहे थे, तो मैंने उनको रेफ्रिजरेटर दिखाया. मैंने कहा लुक एट दिस रेफ्रिजरेटर, व्हाट डू यू थिंक. तो सब बच्चे बोले माय आइसक्रीम इज हियर, माय चॉकलेट इज हियर. तो उनके सारे जो भोग विलास के साधन वो रेफ्रिजरेटर के अंदर. जैसे बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चों के माए बाप कौन है, एक तो मां तो रेफ्रिजरेटर है और टीवी बाप है. क्योंकि बाप जनरली इंफॉर्मेशन और सब सिखाता है ना, तो टीवी तो सब सीखते हैं, और फिर जब भूख लगती है तो रेफ्रिजरेटर सब खिलाती. तो माँ रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी बाप हो गया, वो दोनों माए बाप हो गए आजकल बच्चों. तो मैंने उनको रेफ्रिजरेटर से मैंने बताया कि सी दिस रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उन्होंने भी वो एडवर्टाइजमेंट देखा था. तो मैंने कहा इमेजिन दिस रेफ्रिजरेटर इज अ पर्सन जस्ट लाइक दैट माउथ वॉश वी सॉ, एक व्यक्ति के रूप में. तो ये रेफ्रिजरेटर जो है आपका, ये भी एक व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति आपको जितने आपको चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ये दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है. खुद एक भी नहीं आइसक्रीम खाता ये, खुद एक भी चॉकलेट आपकी. आप कल्पना करो कि इसके अंदर आपने सारी आपके फेवरेट आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स अंदर रख दिए रेफ्रिजरेटर में, और आप चले गए, और आपके गैर हाजिरी में ये जो फ्रिज है ये खाना शुरू कर. ऐसे कैसे हो सकता. तो बच्चे वो एकदम घबरा गए, ये करेगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी सेवा में लगा हुआ. कभी तुमने गौर किया कि ये फ्रिज तुम्हारी कैसी सेवा कर रहा है, अगर ये व्यक्ति के रूप में इसको देखोगे तो। फिर जिसमें हम पास्ता बना रहे थे, तो वो जो कढ़ाई जैसी, तो कढ़ाई मैंने दिखाई कि ये कढ़ाई देखो जिसके अंदर, तो कढ़ाई के अंदर का पास्ता उनको बहुत ललचा रहा था। मैंने कहा कढ़ाई के अंदर के पास्ते को छोड़कर कढ़ाई को देखो कि ये कढ़ाई क्या सिखाती है हमको। तो ये जो ग्रैटिट्यूड के लेसन्स, वॉल क्लॉक टीचेस अनरिकग्नाइज्ड सर्विस, चाहे आप देखो या ना देखो अपना काम करती रहती है। रेफ्रिजरेटर बिना स्वयं के उपभोग के दूसरों के लिए, तो ये लेसन ग्रैटिट्यूड का उन बच्चों को मैं सिखा रहा हूं। फाइनली कुकिंग पॉट, कि खुद जलकर वो जो कढ़ाई है वो खुद जलकर हमें एकदम सही पका हुआ पकवान बनाकर वो कढ़ाई दे रही है। सो जस्ट इन दिस किचन यू कैन लर्न ग्रैटिट्यूड व्हेन यू एवरी डे कम इन द किचन टू एंजॉय फॉर योरसेल्फ। लुक एट द क्लॉक, लुक एट द रेफ्रिजरेटर, लुक एट द कुकिंग पॉट्स, लुक एट एवरी वन एज अ पर्सन हु इज सर्विंग यू, यू आर डिपेंडेंट। देयरफॉर यहां से अब मैंने उनको बाहर लेकर गया लॉन पर, जहां पर मैंने उनको सब कुछ दिखाया कि जैसे कि पेड़ है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये हवा है, ये जल है, वायु, सब कुछ। क्योंकि डायरेक्टली वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे थे, उनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ था, पास्ता के साथ था, चॉकलेट के साथ था, आइसक्रीम के साथ था। तो वहां से तो ये मैं कह रहा हूं कि हमको लग रहा होगा कि हाँ हाँ बच्चों को जरूरी है, बच्चों को ये सब अच्छा लेसन हो गया हमारे लिए। हम लोग भगवान की दी हुई कितनी सारी वस्तुओं को आए दिन जन्मों से, कितने जन्मों से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, मैं बंबई में था तो वहां पर वो बता रहे थे कि प्रभु जी ये जो फ्लैट है ये हमको बेचना है, ये हम लोग ने 30 साल पहले लिया था 5 लाख में, अब 5 करोड़ हो गया इसका। तो वो इतना सा छटाक भर फ्लैट और उसकी कीमत हमने लगा दी है 5 करोड़, और भगवान ये पूरी पृथ्वी हमको ऐसे ही दे दिए हैं, बढ़ोतरी हम लोग यहां पे ना तो भाड़ा भर रहे हैं ना डिपॉजिट दिए हैं, और हम लोग जिए जा रहे हैं और बढ़ोतरी हैं हम इस पूरी पृथ्वी में, और यहां पर ये टुकड़ा मेरा हो गया और ना उसके ऊपर कागज के ऊपर मेरा नाम है, और उसके ऊपर लड़ाई चल रही है, परिवारों के अंदर लड़ाई चल रही है, भाइयों के अंदर लड़ाई चल रही है, बंटवारा हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर देशों के अंदर लड़ाई चल रही है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये हमारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये सब उसके अंदर लड़ाइयां चल रही है, और ये सब दिया हुआ किसने? ऊपर भगवान सोच रहे हैं क्या चल रहा है तुम्हारा भाई, किसने तुमको कहा है तुमने कागज पर तुम्हारा नाम लिख दिया कि तुम्हारा हो गया। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि किचन के अंदर कई बार देखते हैं कि चींटियां जो होती हैं वो अपना डेरा डाल लेती हैं, बहुत वर्षों से चींटियां अगर रह रही हैं, हमको पता नहीं कहां रह रही, तो चींटियां अगर एक साथ आकर वो सारी चींटियां ये डिसाइड करें कि भाई 7-12 ये मेरा है किचन, मेरा नाम लिखो 7-12 पे, कैसे हंस रहे हैं आप लोग चींटियों के ऊपर, वैसे भगवान हम पे हंसते हैं। हम लोग जब 7-12 करते हैं ना, हम लोग भी वो चींटियों की तरह ये मेरा है ये तेरा है अलग अलग। तो कृतज्ञता का भाव कब होगा? जब हमने देखा हमारी अयोग्यता, और हमारी अयोग्यता के बावजूद जब भगवान उदारता दिखाते हैं तब इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। So gratitude shows one's attitude towards Krishna's magnitude. And this is the second level of vandanam. Dainyata se, या दैन्यता से कृतज्ञता, और फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? स्तुति। जब हम इस थोड़े से साक्षात्कार तक पहुंचते हैं, उसके पश्चात फिर हम अगले स्तर पर आते हैं, और वो स्तर है जब हम भगवान का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। उस कृतज्ञता के भाव में भगवान का जो गुणगान होता है उसको कहते हैं स्तुति। और वो क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले गीतामृत के कार्यक्रम में अगले बुधवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो आज ऐसा लग रहा है कि